हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 23। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णातदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराज हंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत्वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं। लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूणा द्रपुलिन्दपुल्कषा, आभीरशुम्भा यवनाखसादया, येनी च पापा यदपाश्रयाश्रया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। वंशी विभूषितकरा, नवनीरधाभा, पीताम्भरधरुणबिम्बफल धरोष्ठा, पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु। वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं, प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापरा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 23। इन अत्यंत ही महत्वपूर्ण और मधुर शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। आज शौनक मुनि सूत गोस्वामी से मनुष्य जीवन प्राप्त करने के उपरांत भी यदि वो केवल अपने भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही लगे रहते हैं और भगवान के भक्तों के साथ संबंध नहीं जोड़ते, भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण रेणु को अपने मस्तक पर नहीं लगाते, भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त नहीं करते हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी हुई तुलसी को सूंघते नहीं है, उसकी सुगंध को अनुभव नहीं करते हैं। ऐसे भक्तों के विषय में बताते हुए कहते हैं, जीवन शवो भागवतांग्रिरेणु न जातु मर्त्यो विलभीतयस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तु लस्या श्वसन शवो यस्तु न वेदगंधम् जीवन शवो भागवतांग्रिरेणु न जातु मर्त्यो भिलभीतयस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तु लस्या श्वसन शवो यस्तु न वेदगंधम् जीवन शवो भागवतांग्रिरेणु न जातु मर्त्यो भिलभीतयस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तु लस्या श्वसन शवो यस्तु न वेदगंधम् शब्दात् जीवन शवो, जीवन मतलब जीवित रहते हुए, शवो अर्थात वो मृतिक शरीर है। जीवन जैसे हमने पहले पढ़ा, जीवित हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आयु बढ़ रही है, जीवित हो इसका लक्षण केवल ये नहीं है कि आप श्वास ले रहे हो, जीवित हो इसका लक्षण केवल ये नहीं है कि आप आहार निद्रा और मैथुन करते हुए अपने भौतिक जीवन को समाप्त कर रहे हो, वो तो यहाँ पर साफ साफ शोने मुनि कह रहे हैं जीवन शव, वो जीते जी मुर्दा है, वो जी रहा है लेकिन मृतिक शरीर है। कौन? भागवतांग्री रेणु, अंग्री कहते हैं चरणों को, रेणु कहते हैं धूल को, और भागवत अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त। जो व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण रेणु से अपने मस्तक को पवित्र नहीं करते हैं, जो भगवान के भक्तों के शुद्ध भक्तों के चरणों का स्पर्श नहीं करते हैं, अपने चरणों को किसी शुद्ध भक्त के अपने सिर को किसी शुद्ध भक्त के चरणों में झुकाते नहीं हैं, वो तो जीते जी मुर्दा हैं। जीवन शवो भागवतांग्रीणो न जातु, न जातु मतलब कभी भी जिसने नहीं किया, मर्त्यु मर्त्यु बिले भते भेत यस्सु अभिलभेत में, अभिलभेत मतलब जिसको किसी भी तरह से प्राप्त ही नहीं हुई है, वो व्यक्ति इतना बड़ा दुर्भाग्य है उसका जिसने जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं की है भागवतांग्री रेणु, भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों की रेणु। वास्तव में भक्तों, जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य है जब उसको किसी शुद्ध भक्त के सानिध्य प्राप्त होता है, उसकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, उसके चरण कमलों में अपना सिर झुकाने का, उसकी चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करने का अवसर मिलता है। भगवान जब किसी पे प्रसन्न होते हैं ना, तो वो किसी शुद्ध भक्त से आपको मिला देते हैं, और भगवान प्रसन्न है ना आप पर, इसका कैसे पता चलेगा? जब आपको उस किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, क्या आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कि आपकी इच्छा हो, भगवान आपकी इच्छा के अनुसार आपको सानिध्य प्रदान करते हैं। यदि आपकी इच्छा ही किसी ऐसे पाखंडी व्यक्ति के संगत की है जो कि आपको भौतिक वस्तुओं और भौतिक आकर्षण की ओर आपको है ना अग्रसर करे, जो कि आपको ये बताए कि ये करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, ये करोगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, यदि केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा है ना, तो भगवान आपको ऐसे ही लोगों से मिलाएंगे। और आज हम देखते हैं 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो चाहते हैं कि हम भौतिक सुख प्राप्त करें, भौतिक आनंद। भक्ति भक्ति तो खैर साइड में ठीक है, लेकिन हमारा भौतिक जीवन बहुत ही लग्जरियस होना चाहिए, ये शर्त पे भक्ति करते हैं। ये उनकी शर्त होती है कि हमारा भौतिक जो ये संसार है ना, उसके अंदर कोई भी दुख नहीं होना चाहिए, सुख होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, धन धान्य होना चाहिए, हमारी लाइफ लग्जरी होनी चाहिए, उसके साथ साथ भक्ति। लेकिन यदि आपके अंदर ऐसा ही इच्छा है, भौतिक वस्तुओं की कामना अभी तक हृदय में बाकी है, और हम चाहते हैं कि हम साथ में भक्ति भी करें, तो ऐसा संभव नहीं है। सारी कामनाओं को त्यागना पड़ेगा, और हृदय के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो। जब ऐसी तीव्र इच्छा होगी ना, तब कहीं जाकर कोई शुद्ध वैष्णव का साक्षात्कार होगा, किसी शुद्ध वैष्णव के चरणों की धूल प्राप्त होगी। और जब कभी किसी शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो जाए ना, बस और कुछ नहीं करनी है, यहाँ तक एंड है। एक शुद्ध भक्त जो होता है ना, भगवान कहते अहम भक्त पराधीन, मैं किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं होता हूँ, ना ही बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होता हूँ, ना तपस्या करने से प्राप्त होता हूँ, ना समाधि लेने से प्राप्त होता हूँ, ना ही वैदिक स्रोत्रों के उच्चारण से प्राप्त होता हूँ, ना ही बहुत कठिन कठिन समय तक, बहुत दीर्घ काल तक ध्यान करने से प्राप्त होता हूँ, इन वस्तुओं से मैं प्राप्त हो ही नहीं सकता, ना हम वेदाय न तपसा न ध्यान न चेष्टा, में न दान देने से, न वेद पढ़ने से, न ही पूजा करने से किसी से प्राप्त नहीं होता हूँ, बल्कि सिर्फ एक ही तरीका है मुझे प्राप्त करने का कि आप किसी शुद्ध भक्त के सानिध्य को प्राप्त करो। बस कोई शुद्ध भक्त मिल जाएगा ना, भगवान कहते अहम भक्त पराधीना, मैं तो उस शुद्ध भक्त के हाथों की कठपुतली हूँ, वो जिससे चाहे मुझे दे दे। तो हमें अवश्य भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो, क्योंकि भगवत भक्ति प्राप्त करने का बस एक यही तरीका है। भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के श्लोक नंबर 20 में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को कहते हैं, माता इस भौतिक जगत में जो हमारी आसक्ति बढ़ गई है ना, वही आसक्ति हमारे लिए बंधन का कारण है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानः कवयो विदु, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो विदु हैं, जो विद्वान हैं, वो ये बताते हैं कि प्रसंगम आसक्ति है वो अजरम पाशम, बहुत ही खतरनाक पाश है, बहुत बहुत भयंकर, ऐसा भयंकर बंधन है जो अजर है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। आसक्ति के कारण ही हम इस भौतिक जगत में बारंबार जन्म लेने पर विवश हो जाते हैं। 84 लाख तो योनियां हैं और उन योनियों में भी अनेक अनेक जीव हैं, और हमें ना जाने कब किस जीव की योनि प्राप्त हो जाएगी, हमारी आत्मा यूं शरीर पर शरीर बदलती रहेगी, और इसका कारण केवल आसक्ति है। और आसक्ति खुद ब खुद नहीं जाएगी, चाहे आप कितनी बड़ी आयु हो जाए, आसक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। और अगर इस आसक्ति को समाप्त नहीं कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होगी, तो क्या करना चाहिए? जब देवहूति मैया कपिल देव से पूछती हैं तो वे बताते हैं, स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृत। बस मैया, आसक्ति को समाप्त करने का कोई तरीका नहीं है। स एव, वही आसक्ति साधुषु कृतो, यदि साधुओं के अंदर परिवर्तित हो जाए तो मोक्ष द्वारम उपावृत, तो आपके जीवन में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में शास्त्र कहता है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होये साधु संग। आपके हृदय में भक्ति तभी उत्पन्न हो सकती है, जन्म भक्ति का तभी होगा जबकि आप किसी शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव का सानिध्य प्राप्त करो। तो पूछा माता देवहूति ने कि वो साधु कैसे होते हैं, साधु किसे कहते हैं? शुद्ध भक्त, यहाँ पर साफ साफ बताया, भागवतांग्री रेणु, भगवान के भक्त का के चरणों की धूल हमें सिर पे लगानी है, तो कैसे साधु होने चाहिए? वे कहते हैं, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण। साधु का पहला लक्षण बता दे, तितिक्षव, वो तितिक्षव होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। वो उसके ऊपर भले कितना ही अत्याचार क्यों न हो, कितना ही दुख उसके जीवन में आ जाए, लेकिन वो अपने भक्ति के मार्ग से कभी भी ना टले। वो हर एक दुख को सहकर भी अपनी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। और कारुणिका, कारुणिका मतलब उसके हृदय में सब जीवों के लिए बहुत दया होनी चाहिए कि कैसे मैं इन सारे जीवों का दुख दूर करूं। ये साधु नहीं होता है जो धन लेकर और है ना बहुत बड़े बड़े प्रचार करता है कि इतने ज्यादा मुझे धन चाहिए इसके बदले में, नहीं। वो यदि वो प्रचार भी करता है ना, तो सिर्फ उसका भाव यही होता है, करुणा का भाव होता है उसके हृदय में, कि क्योंकि भौतिक जगत में जीव इतना ज्यादा दुखी है, तो उनके दुख को मैं कैसे समाप्त करूं। वो दयालु होता है, दयालु मतलब वो कैसे करके, वो चाहता है मैं कैसे उनके दुख को दूर करूं, उनको खुशी कैसे पहुंचाऊं। कारुणिका मतलब मैं उनके दुख को कैसे दूर करूं। हर जीव के प्रति सर्वदेही नाम, हर जीव के प्रति उसके अंदर करुणा होती है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, हृदय में केवल करुणा होती है कि इसको आनंद प्राप्त होना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं कि उसको सुखी पहुंचा। अजात शत्रु, वो किसी को शत्रु नहीं मानता है, चाहे उसके साथ लोग कैसा भी व्यवहार करें, वो हमेशा सबका भला चाहता है, शांत होता है किसी भी वस्तु के लिए। क्योंकि अशांति कब होती है? जब हमारे हृदय में कोई कामना होती है, ये पालूं वो पालूं, लेकिन अशांत, उसके मन में कोई, वो शांत होता है, उसके मन में कोई भी कामना नहीं होती है। साधवा, साधवा का मतलब होता है वो शास्त्रों के अनुसार चलता है, जैसा शास्त्रों में लिखा होता है वो चलता फिरता भागवत है। और साधु भूषण यानी अलौकिक गुणों से भूषित होता है, अलौकिक दिव्य गुण होते हैं उसके अंदर। ऐसे शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली यदि प्राप्त हो जाए ना, तो फिर उसका लाभ क्या होगा जानते हैं? कपिल देव बताते अपनी माता को, बस ऐसा शुद्ध भक्त प्राप्त हो जाए फिर क्या आपके हृदय में आ जाएगा, मय्यनन्येव भाइवेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। बस भक्ति खुद ब खुद उत्पन्न हो जाएगी, जिसके हृदय में स्वयं भक्ति का समुद्र होगा, यदि वो आपके साथ सानिध्य उसका मिल जाएगा, तो आपके हृदय में भी उसके लिए आपके हृदय में भी भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और क्या साधु का लक्षण बताते? मत कृते यत कर्म त्यक्त कर्माणा, अपने सारे कर्मों को मेरे लिए त्याग देता है। और त्यक्त स्वजन बांधवा, वो हर एक संबंध को तोड़ देता है, उसका केवल संबंध मेरे साथ होता है। और सबसे बड़ा साधु का गुण कहते हैं, मदाश्रय कथामिष्टा शुर्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मंदगते च गतचेतसा। मदाश्रय कथामिष्टा, मेरे आश्रय रहता है सदैव, मेरे विषय में ही सोचता है और मेरी ही कथाओं को, मदाश्रय कथामृष्टा, कथाओं को सुनकर आनंदित होता है। शुद्ध भक्तों का लक्षण बता रहे हैं, शुण्वन्ति कथयन्ति च, उनको आनंद कब होता है? केवल मेरी कथाओं को श्रवण करने में। तो यदि साधुओं को ढूंढना है जिनके चरणों की रेणु लगाने के लिए आज शौनक मुनि बता रहे हैं कि यदि ऐसे शुद्ध भक्तों के चरणों की रेणु, चरण कमलों की धूल आपको नहीं मिली है ना, न जातो मर्त्यो भी लभेत यस्तु, अगर कभी भी ऐसे शुद्ध भक्तों की चरण कमल की धूल लगाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है ना, तो जीवन शवो, भले जी रहे हो लेकिन मृतक हो, डेड बॉडी चल रही है, यानी जीता हुआ मुर्दा है वो, जिसने कभी भी शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त नहीं किया। आगे कहते हैं, श्री विष्णु पद्या मनुजस तुलस्या, श्री विष्णु पद्या यानी भगवान विष्णु के चरण कमल, और मनुज यानी मनु की संतान, आपने मनुष्य का जीवन प्राप्त किया है, भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु के चरण कमलों पर लगी हुई तुलस्या, तुलसी दल को श्वसन, श्वसन शवः, यदि आपने उसको कभी भी, यस्तु न वेद गंधम, जब तक आपने उसके गंध को, उसकी सुगंधि को नहीं अनुभव किया, न वेद गंधम, तो आप श्वसन शवसो, श्वस कहते हैं सांस लेता हुआ, शव कहते हैं मुर्दे को, मुर्दा कभी सांस नहीं लेता है। वास्तव में भक्तो, शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि यदि आप किसी मुर्दे को, आप समझो कि ये मुर्दा है और उसको लेके जा रहे हो शमशान घाट की ओर, और रास्ते में वो जाग जाए, सांस ले या चलने फिरने लग जाए, तो आप क्या बोलोगे? वो तो मर गया था ना, अब ये क्या है? प्रेत है, प्रेत आत्मा है, वो भूत है। और उसी तरह से यदि हम जी रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों की कथाओं को श्रवण नहीं कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों की चरणों की रेणुओं को अपने सिर पर नहीं लगा रहे हैं, भगवान के चरणों में लगी हुई तुलसी का कभी रसास्वादन नहीं करते हैं, तो शास्त्र साफ साफ कह रहा है, सांस लेते हुए मुर्दे यानी प्रेत हो आप, आप तो भूत हो, आप तो प्रेत हो। प्रेत आत्मा है वो जो भगवान की सानिध्य नहीं करती है, जो भगवान के भक्तों के चरणों की धूल को अपने सिर पर नहीं लगाती है। अनुवाद, जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की है वह निश्चित रूप से शव है, तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े हुए तुलसी दलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया है वह श्वास लेते हुए मृतक देह के तुल्य है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने के मतानुसार श्वास लेता शव प्रेत होता है। जब मनुष्य मर जाता है तो वह मृतक कहलाता है, किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। प्रेत सदैव ही अत्यंत बुरे तत्व होते हैं जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसी तरह प्रेत सदृश अभक्त जिन्हें ना तो शुद्ध भक्तों के लिए न मंदिरों के विष्णु विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भी भेंट स्वीकार नहीं करते। एक आम कहावत है कि प्रियसी के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रियसी के कुत्ते को प्यार करना होता है। शुद्ध भक्त की अवस्था भगवान के शुद्ध भक्त की निष्ठापूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव भगवान की भक्ति की पहली शर्त क्या है? शुद्ध भक्त का दास होना। और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है, उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूल को धारण करना जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है, यही शुद्ध शिष्य परंपरा है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक ही लाइन में सब कुछ समझा दिया कि शुद्ध भक्त का दास होना ही पहली शर्त है। इस भगवान की भक्ति में पहली शर्त क्या है? कि आपको किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त करना ही है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो दूसरे शुद्ध भक्त के चरणों के दास होते हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही सिखाया। वे कहते हैं, ना हम विप्र न च नरपति, न वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति, न वानस्थो व्यतुर्वा। वास्तव में ये जो वर्ण आश्रम है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास, ये सारी जो उपाधियां है ना वो हमारे शरीर की हैं, हम इसमें से कुछ नहीं है। महाप्रभु से किसने पूछा, आपका वर्ण क्या है, आश्रम क्या है? तब उन्होंने कहा, ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचर्य, न ग्रस्त, न वानप्रस्थ और न ही संन्यासी। तो बोला, फिर आप क्या हो? तो उन्होंने कहा, बहुत ही सुंदर उत्तर है, गोपी भरता पद कमल दास दास दासानुदास। मैं तो गोपियों के भरता, गोपियों के प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास दास दासानुदास, दासों के दासों के दासों का दास हूँ। वास्तव में इस स्थिति को समझना है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की भक्ति की पहली शर्त यही है कि शुद्ध भक्त का दास हो, और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है, उस शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूलि को धारण करना जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है। वो शुद्ध भक्त कब तक नहीं हो सकता? जब तक कि किसी और शुद्ध भक्त से जुड़ा हुआ नहीं, अकेले से। यही शुद्ध शिष्य परंपरा या भक्ति परंपरा है। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्त को खोजना चाहिए जो किसी शुद्ध वैष्णव के सानिध्य में भक्ति कर रहा हो। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बता रहे हैं, अत्यंत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जब महाराज रघुगण ने परम संत जड़ भरत से पूछा कि उन्होंने परमहंस की मुक्त अवस्था कैसे प्राप्त की, तो उन्होंने निम्नानुसार उत्तर दिया, श्रीमद् भागवतम 5.12.20 बहुत ही सुंदर मेरा प्रिय श्लोक है। इसमें जड़ वरस जो है वो महाराजा रहुगण को बताते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है, मुक्त अवस्था जैसे परमहंस कैसा बना जाता है। तो वे कहते हैं
रहुगण तपसान याति न चेचयाने वपरान गृहात्वा न चंदसानैव जलाग्नि सूर्ये वीना महत्पादरजो भिषेकम्।
रहुगण तपस्या न याति, हे रहुगण ये जो भगवान की भक्ति है ना, हृदय के अंदर जो प्रेम है ना, वो तपस्या करने से नहीं मिलता है, न चेज्या और न ही पूजन विधि से प्राप्त होता है, निर्वपणात गृहाद्वा न ही संन्यास ग्रहण करने से या गृहस्थ आश्रम का पालन करने से प्राप्त होता है, न छंदसा और न ही वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण करने से। लोग सोचते हैं ना कि इनको तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ना आते हैं, समझो उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। नहीं, कोई लोग बोलते हैं कि बहुत समय से पूजा करता है, अर्चना करता है, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ बोलते नहीं, कोई बोलता है संन्यास ग्रहण करने से शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, उधर नहीं। नैव जलाग्नि सूर्य, नैव जला यानी कि भले ही वो बहुत ही ठंडे पानी के अंदर वो प्रज्वलित अग्नि के समक्ष तपस्या करे, भले वो ठंडे पानी में बैठकर तपस्या करता है या बहुत बड़ा अग्नि जलाता है उसके बीच में बैठकर तपस्या करता है, नहीं, ऐसा करने से कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है, भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं होती है। साफ साफ बताया, विना महत्पाद रजोभिषेक, जब तक महत्पाद शुद्ध भक्तों के चरणों की रज के साथ अभिषेक नहीं कर लेता कोई, जब तक शुद्ध भक्तों के चरणों को की धूल को अपने शरीर पर नहीं लगाता, तब तक उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। ये शर्त है कि हमें यदि भगवत प्राप्ति करनी है ना, तो शुद्ध भक्तों का सानिध्य बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान श्री राम शबरी जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति क्या है, शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करो। अदौ श्रद्धा ततः साधु संग, श्रद्धा होनी चाहिए कि ये शुद्ध भक्त ही मेरा कल्याण करेगा, और उसके बाद उस श्रद्धा को हृदय में रखकर उस शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त करेंगे। और सिर्फ केवल साधुओं का संग करना ही पर्याप्त नहीं है, उनके अनुसार जो वो हमें उपदेश देते हैं, जो आदेश देते हैं, उसके अनुसार जीना है और भजन क्रिया को स्टार्ट करना है। बस हमारा काम इतना ही है, बस यहाँ तक हमारा काम है, आगे वो खुद ब खुद होता रहेगा। हमारा काम क्या है, हृदय के अंदर श्रद्धा को डेवलप करना कि ये जो साधु संग में कर रहा हूँ, जो शुद्ध भक्त का सानिध्य मुझे मिलेगा ना, उसी से मेरा कल्याण होगा, उसी से कृष्ण प्राप्ति होगी। और वो साधु, वो शुद्ध भक्त जो भगवान के शब्दों का उच्चारण करते हैं, भगवान की कथा, शुद्ध भक्त के लक्षण तो हमने अभी पढ़े, तो ऐसे शुद्ध भक्त के अंडर में रहकर, उनके सानिध्य में रहकर हमें क्या करना है, भजन क्रिया करनी है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, भगवान की विग्रह सेवा करनी है, भगवान के प्रेम अपने हृदय में भगवान के प्रति कोई न कोई संबंध जोड़ना है। जब इस तरह से हम करेंगे ना, उसके बाद खुद ब खुद अनर्थ निवृत्ति होती जाएगी। अपराधों को खत्म करने के लिए भक्ति नहीं की जाती है, अपराध तो खत्म हो ही जाते भक्ति करने से, तो हृदय के अंदर अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी और उसके बाद धीरे 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 भगवान के प्रति निष्ठा उत्पन्न होगी कि यही से मुझे आनंद प्राप्त होने वाला है, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। और ऐसे जब उसको लक्ष्य मानकर हम भक्ति करते ना कि ये भक्ति ही मेरा लक्ष्य है, ये कृष्ण ही मेरा लक्ष्य है, निष्ठा हृदय में हो जाएगी ना, तो हृदय में रति उत्पन्न होती है। रति मतलब कि वो समय अच्छा नहीं लगता जब कृष्ण के अतिरिक्त कोई कुछ और सुनने को मिलता है, जब कृष्ण के प्रेम के अतिरिक्त कुछ और करने का अवसर मिलता है, जब कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना पड़ता है या बोलना पड़ता है, वो अच्छा नहीं लगता। रति होती है, जैसे खुद ब खुद दिल करता है कि कुछ कृष्ण के विषय में सुना जाए, कृष्ण के विषय में बोला जाए, कृष्ण के लिए कुछ किया जाए। और रति जो है वही हमारे प्रति हमारे हृदय में भाव उत्पन्न करती है कि वो कृष्ण मेरा है, मेरा संबंध है उसके साथ, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और मैं उसका हूँ, वो मेरा है मैं उसका हूँ। जब ये दृढ़ संबंध हमारे जीवन में आ जाएगा ना, फिर भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो है ना वो गाढ़ हो जाएगा, इतना गाढ़ा इतना तीव्र प्रेम हो जाएगा कि जिस तरह से मछली का प्रेम हो जाता है ना जल के साथ, वो एक क्षण के लिए भी जल के बगैर नहीं जी सकती, उसी तरह जब कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाए ना तो फिर ऐसा ही होगा, समझो उनके बगैर एक क्षण भी युग के, जैसे महाप्रभु कहते हैं युगायतं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंदं विरहेण मे। हे गोविंद, आपके विरह में एक एक क्षण एक एक युग के समान लगता है। और नेत्रों से बारिश की तरह, ये केवल कहने की बात नहीं है, जब किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य हमें प्राप्त होता है ना तो हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है ना वो निचोड़ देता है हमारे हमारे जो भी गंदगी होती है ना वो सारी समाप्त हो जाती है, हृदय में केवल कृष्ण प्रेम हो जाता है। और उस प्रेम के रहते एक क्षण भी हमें युगों के समान लगता है, हाँ एक क्षण भी भगवान के बगैर नहीं रहना चाहते हैं। तो ये सब होता कैसे है, जब किसी भागवतांग्री रेणु, जब किसी शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि प्राप्त होती है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध मुक्त भक्तों की संपत्ति स्वरूप है। फलतः कृष्ण को केवल एक भक्त ही दूसरे भक्तों को सौंप सकता है। कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते हैं, अतएव भगवान चैतन्य ने स्वयं को गोपी भर्तु पद कमल दास दास दासानुदास अर्थात वृंदावन में गोप बालाओं का पालन करने वाले भगवान के दासों का अत्यंत ही आज्ञाकारी दास कहा है। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वह भगवान के दासों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है और इस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े हुए तुलसी दलों का आस्वादन करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। वृंदावन के सारे लोग भगवान कृष्ण की अलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्रीमती राधा रानी परम पूर्ण की सुकुमार हृदय वाली अर्धांगिनी हैं, जो संसार की स्त्री रूपा प्रकृति की सिद्धावस्था के अनुरूप हैं, अतएव निष्ठावान भक्त को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है। और एक बार जब वे भगवान श्री कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती हैं, तो भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों में श्रोमणी है श्रीमती राधा रानी, वो अत्यंत ही कोमल हृदय वाली है। और जब जीव उनसे प्रार्थना करता है, और बहुत सरल है, श्रीमती राधा रानी के सामने बैठकर कुछ नहीं करना है, केवल प्रेम से उच्चारण करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए पुरकशिश भगवान की आलादनी शक्ति, कृपया मेरे अशांत और अपवित्र मन को अपने चरणों की ओर आकर्षित करो और मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकूं। जब श्रीमती राधा रानी हमारी इस प्रार्थना को सुनती है ना, तो पहला काम जानते हो क्या करती है? वो भगवान श्री कृष्ण से कहती है, देखो कन्हैया, ये कितना शुद्ध हृदय वाला भक्त है, ये तो आपकी बहुत ही प्रेम से सेवा करना चाहता है, ये तो मुझसे भी श्रेष्ठ है, आप कृपा करके इसे अपनी करुणा प्रदान कीजिए, अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, अपना चरण का आश्रय प्रदान कीजिए। और एक बार यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बार जब वे भगवान श्री कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती हैं, तो भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। इसलिए हमें सदैव श्रीमती राधा रानी के समक्ष बैठकर महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव निष्कर्ष यही निकलता है। निष्कर्ष बता रहे श्री प्रभुपाद जी की, क्या निष्कर्ष है? कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा की खोज न करके भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्त की कृपा से भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो उठेगा। इसे हमें सदैव शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, शुद्ध भक्तों के सानिध्य के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और यदि नहीं मिलता है ना, तो फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त कराओ। और फिर भी यदि नहीं मिलता है ना, तो एक शुद्ध भक्त है हमारे साथ, वो सदैव हमारे साथ रहते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। और वो है परम वैष्णवी तुलसी महारानी। तुलसी महारानी को सदैव अपने साथ रखना चाहिए। जो ग्रस्त हैं, उनको तुलसी महारानी की बहुत सेवा करनी चाहिए, उनको सुबह शाम है ना उनकी आरती करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, उनके समक्ष बैठकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि जीवन शवो भागवतांग्री रेणु, उसका तो जीवन जीते जी वो मुर्दा है जो भगवान के भक्तों के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर नहीं लगाता है। तो एक शुद्ध भक्त जो रोज भगवान की सेवा करता है, ना केवल सेवा करता है परंतु भगवान जिससे बात करते हैं, ऐसा कोई शुद्ध भक्त जो भगवान के साथ प्रेम करता है, प्रेम का आदान प्रदान होता है, भगवान डेली उनकी बात करते हैं, उनसे उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त की सेवा करके जो हमें लाभ प्राप्त होता है ना, वो उतना ही सेम उतना ही लाभ हमें प्राप्त होता है जब हम तुलसी महारानी की सेवा करते हैं। तुलसी महारानी की सेवा करना, उनके दर्शन करना, उनको प्रणाम करना, उनके अंदर जल देना, उनकी है ना जहाँ पर वहाँ तुलसी महारानी लगी हुई है वहाँ पर सफाई करना और सुबह शाम तुलसी महारानी की आरती करना, ये बहुत बहुत लाभदायक है। इवन आप कोई भी सेवा भगवान की यदि करने का समय नहीं होता है, तुलसी महारानी यदि हमारे घर पे हैं और हम डेली उनको जल देते हैं और एक पत्ता तुलसी महारानी का यह कहकर निकालते हैं, तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं, तुलसी अमृत जन्मासी सदा तुम केशव प्रिया केशवार्थम छिनोमि तुम वरद भावो शोभने। हे तुलसी महारानी, मैं तो निकृष्ट जीव हूँ, हर किसी को दुख देता रहता हूँ, मगर आज मैं आपके पत्तों का चयन कर रहा हूँ भगवान को आनंद देने के लिए, क्योंकि आपका तो जन्म ही कृष्ण को आनंद देने के लिए हुआ है। इसलिए केशवार्थम चिनोमि तुम, भगवान के लिए आपके पत्ते को तोड़ रहा हूँ, तो फिर भी मुझ जैसे पतित जीव के कारण आपको जो कष्ट पहुंचा है उसे क्षमा कर दीजिए। और जब हम वो पत्ता निकाल के चंदन लगा के उसके ऊपर चरणों भगवान के चरणों के ऊपर लगाते ना, तो इस सेवा से भगवान इतना प्रसन्न होते हैं जितना बड़े बड़े तपस्या करने से प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त और भगवान का मिलाप हो रहा है। भगवान कहते हैं, नचित आसमान मनुष्य कश्चन में प्रिय कृतम भविता न चमे तस्मात अन्य प्रियतरो भवि। इस संसार में उसकी उपेक्षा से कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना ही कभी कोई होगा। वो भक्त जो भगवान के साथ उनके भक्तों को मिलाता है, भगवान के उपदेश को उनके भक्तों तक पहुंचाता है, ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं और हमें खोज खोज कर उनकी सेवा करनी चाहिए, सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहिए। इसी से हमारे जीवन का कल्याण होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्ण।